ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 47। श्री नागा उच्चुः येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हितानि नः तद्बख्य पाटनेनासां दत्तानन्द नमोस्तुते। श्री नागा उच्चुः येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हितानि नः तद्बख्यः पाटनेनासां दत्तानन्द नमोस्तुते। श्रीनागा उच्चुः येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हितानि नः तद्बख्यः पाटनेनासां दत्तानन्द नमोस्तुते। शब्दार्थ श्री नागा उच्चुः। नागलोक के वासी जो नाग सदृश दिखते हैं जेना जिस व्यक्ति से पापेना अत्यंत पापी हिरण्यकशिपु रत्नानी हमारे सिरों की मणियां स्त्री रत्नानी सुंदर स्त्रियां रितानी हर ली गई नहा हमारी तत् उसका वक्ष पाटनेन वक्षस्थल को चीर कर आसाम समस्त स्त्रियों का जिनका अपहरण हुआ था दत्तानंद हे आनंद के स्रोत नमः हमारा सादर नमस्कार है अस्तुते तुम्हारे प्रति। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की नागलोक के वासियों ने कहा अत्यंत पापी हिरण्यकशिपु ने हम सबके फणों की मणियां तथा हम सबकी सुंदर पत्नियां छीन ली थी। अब चूंकि उसके वक्षस्थल को आपने अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया है अतएव आप हमारी पत्नियों की परम प्रसन्नकर्ता के कारण है। इस तरह हम सभी मिलकर आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य यदि किसी की संपत्ति तथा पत्नी बलपूर्वक छीन ली जाए तो वह शांतिपूर्वक नहीं रह सकता। फैक्ट पृथ्वीलोक के नीचे बसे नागलोक के सभी वासी अत्यंत चिंतित थे क्योंकि हिरण्यकशिपु द्वारा उनकी संपत्ति चुरा ली गई थी और पत्निया का अपहरण हो चुका था। अब हिरण्यकशिपु के मारे जाने से उनकी संपत्ति तथा उनकी पत्नियां वापस मिल चुकी थी, जिससे उनका परम प्रसन्नता हुई। विभिन्न लोकों के निवासियों ने भगवान को सादर नमस्कार किया। क्योंकि हिरण्यकशिपु की मृत्यु से उन्हें राहत मिली थी, अब हिरण्यकशिपु द्वारा किए गए उत्पातों की ही तरह सारे संसार में उत्पात हो रहे हैं, क्योंकि सरकारों आसुरी हैं। जैसा कि श्रीमद्भागवत में 12वें स्कंद में बताया गया है, कलिजुग के सरकारी कर्मचारी उच्चकों तथा लुटेरों जैसे होंगे। इस तरह एक और प्रजा अन्न के एक और प्रजा अन्न के भाव से पीड़ित होगी और दूसरी ओर सरकार उस पर भारी कर लगाएगी। दूसरे शब्द में इस युग में विश्व के अधिकांश भागों में लोग हिरण्यकशिपु के शासन सिद्धांतों द्वारा उत्पीड़ित होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रति अंदर से आभार प्रकट करता हूं कि हम नित्यांत असमर्थ यज्ञ होते हुए भी आप मुझे इस भागवत कक्षा में कुछ आलोचना करने के लिए सुयोग दिए हैं। तो इसलिए मैं इस्कन वृंदावन की तरफ से और हमारा तरफ से आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और हमारे वृंदावन के अधिपति श्री श्री कृष्ण बलराम, आपका भी कृष्ण बलराम है, वृंदावन के कृष्ण बलराम श्री श्री राधे श्याम सुंदर श्री नित्याय गौर सुंदर श्रील प्रभुपाद की कृपा आशीर्वाद आप सभी के लिए याचना करता हूँ। हरे कृष्ण। आज ऐसे एक विशेष तिथि है, ब्रज में सभी मनाते हैं, शायद आपको पता होगा कि नहीं। अगर आप इस्कन वृंदावन के लाइव खोलेंगे तो आज के श्रृंगार में भगवान के अल्टर में एक विशेष रूप आपको दिखाई पड़ेगा, पूरा जंगल जंगल जंगल, पूरे जंगल के अंदर ठाकुर जी बैठे होंगे। विशेष आज के दिन, आज के दिन को कहते हैं हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल पक्षा की तृतीय तिथि है, तीसरा दिन है। इसलिए पूरे ब्रज में जितने ठाकुर जी है आज उनका हरी हरी वेश होगा, ड्रेस भी हरी होगा। हम हरी हरी करते हैं लेकिन हरी भी शब्द का अर्थ भी ग्रीन होता है ना, तो हरियाली है। ऐसे तीज जो पर्व है, ऐसे हमारा भारतवर्ष में तो कोई दिन ऐसा छूट नहीं जाता, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत कोई ना कुछ तिथि तो होता ही है। तो ये तीसरा दिन कुछ विशेष है, इसलिए तीज बना लिए। क्या तीज है ना, हरियाली तीज। क्यों हरियाली भाई? क्योंकि अभी जो महीना चल रहा है श्रावण मास वर्षा ऋतु का, तो उसके पहले वर्षा से पहले ग्रीष्म ऋतु था। ग्रीष्म जालते हैं बड़ा निदाघ दारुण सूर्य प्रकोप। अब वृंदावन में तो दो ही सीजन माना जाता है, एक गर्मी एक ठंडी, बाकी तो कुछ महसूस ही नहीं होता। यही दोनों अपने पिक पॉइंट में चलते हैं वहां। तो इतने गर्मी से तरस तरस करके ठाकुर जी भी तरस जाते हैं, क्योंकि आजकल सेना एसी फेसी लगा दिए, लेकिन ठाकुर जी का घर जब इससे वृंदावन है तब से तो एसी फेसी इलेक्ट्रिसिटी था ही नहीं, तो क्या करें, तो क्या करेंगे, गर्मी तो होता था खूब, तो चंदन वंदन लगाते थे। लेकिन आजकल ब्रजवासी तो एक दिन फिर कुछ घंटों तक चंदन रखते हैं, बाकी ऐसे ही पूरा चार महीने गर्मी में पसीना में रहते हैं ठाकुर जी। लेकिन बाकी जगह में जब कम गर्मी वहां महीना महीना चंदन वेश होता हो, यहां एक घंटे पता नहीं लोग की भाव जो भी हो। तो इतना गर्मी, चलो आजकल तो एसी फेसी की व्यवस्था हो चुका है, लेकिन पहले जमाना में तो चंदन लगाना, पानी छिड़काना, पंखा अलट चामर करना, इसी प्रकार से जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं राजा महाराजा थाट बाट जमींदार लोग, वो सब नौकर बाकर लगा करके आपने गर्मी से राहत पाने के लिए व्यवस्था करते थे। भगवान के सेवक लोग भी उनको इसी प्रकार व्यवस्था करते थे। आज भी जाएंगे पुराना मंदिर में, देखो खींचते हैं इसे रस्सी जिसमें वो पंखा चलता रहता है, वही व्यवस्था रहता है उनको अलट चामर के उनको हवा देने के लिए। अब गर्मी चला ही गया ग्रीष्म ऋतु, और ये जो गर्मी और बारिश के बीचों बीच जो महीना है और क्या कहें, गर्मी भी नहीं और बारिश की शुरुआत हुआ, इसको बोलते हैं गुड़गुड़, मतलब इतनी उमस उमस बोलते ना, ओहो ओ तो और खराब है, गर्मी तो फिर भी ठीक था, इसमें कूलर भी चलाओ वो बेकार है, चिपचिपाहट आएगा, पूरा उमस रहता है इस सीजन में, तो उसमें तो केवल राहत मिलेगा हवा से, केवल पवन से ही आपको राहत मिल सकता, बाकी किसी ठंडक में ना गर्मी में कुछ राहत नहीं मिलेगा, बड़े ऐसे सीजन है ये। तो इसमें बारिश के शुरुआत में जो पत्ते बिल्कुल सूखा सूखा सब पड़ गया था, बारिश जब शुरू हुआ घास पत्ते पेड़ पौधे सब कपूर आने लगे, सब नए नए पत्ता आने लगा, पूरे हरी दुनिया का जहां देखो तहां पूरा जैसे धरती माता एक हरी को क्या बोलते हैं, हरी साड़ी पहना, हिंदी में हरी बोलते ना, ग्रीन साड़ी पहनी हुई, पूरा ग्रीन 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 ग्रीनरी है चारों तरफ, ग्रीन ग्रीन। तो लेकिन ग्रीन तो दिखती तो बड़ा सुंदर है, लेकिन उमस गुलगुली जो वेदर है बड़ा चिपचिपाहट पर ठीक नहीं। तो इसलिए आप देखेंगे गांव में तभी जमाने जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लोग क्या करते थे, चौप घर से, घर में नहीं रहते, घर से बाहर, घर से बाहर आ ही जाएं, घर में तो रह ही नहीं सकते आप, घर से बाहर आएंगे तभी जमाने तो मच्छर नहीं होते थे, आजकल मच्छर हो गए तो मच्छरदानी लगाना पड़ता, लेकिन मच्छर नहीं होते, घर से खटिया लेकर चरपाई लेकर बाहर आ जाएंगे और बगीचा में पेड़ के नीचे इधर उधर खटिया में सोएंगे, और ज्यादा होगा तो दिन में थोड़ा पंखा झलेंगे, नहीं तो हवा चलता थोड़ा इसी में आनंद से रहेंगे, घर में तो रह ही नहीं सकते। चाहे कोई वस्तु आपको हिलाओ, नहीं तो आपको हिलाओ, हवा चाहिए नहीं तो आप रुक नहीं सकते। तो इसीलिए ठाकुर जी का सेवा भी सेवकुल को ऐसे करते हैं, इसी सीजन में नावन में जब हरियरी हो जाता है, घर में तो ठाकुर जी अल्टर में नहीं रह सकते, अल्टर से बाहर आ जाते हैं, ऐसे बढ़िया हरी हरी दृश्य देखेंगे, और ठाकुर जी को आलट चामर तक करते करते थक गए, बोले अब ठाकुर जी हम नहीं हिलाएंगे, आप हिलो, तो उनको झूला में बैठा कर हिलाएंगे, बोले आप ही हिलते रहो, हवा ऑटोमेटिक चलते रहे, हम क्यों दूसरा चीज क्यों हिलाएंगे, आप ही हिलते रहो। तो आज के दिन उनको आनंद देने के लिए अल्टर से बाहर ला करके झूला में बैठा करके हिलाना शुरू कर देंगे, और बड़े सुंदर हरी हरी की दृश्य है, उसके अंदर भक्त लोग उनको अच्छा से पोशाक पहना करके हरी पोशाक उनको लाकर झूला में बैठा कर झुलाना शुरू करते हैं। ऐसे हमारा मंदिर में तो एकादशी से पूर्णिमा तक 3 दिन 4 दिन करते हैं, लेकिन प्राय आज से ही झूला शुरू हो जाता है झूलन उत्सव। तो इसलिए हरियाली के तीज तीसरा दिन से भगवान की झूलन उत्सव शुरू होता है, भगवान घर से बाहर आ जाते हैं, बोले ना घर में बड़ा तंग हो गया मन रहते रहते, बाहर आकर के झूला में बैठ करके झूलते हैं और सबको खुले आम दर्शन देते हैं, सबका प्रार्थना सुनते हैं, सबका सेवा स्वीकार करते हैं, है ना। तो ऐसे एक आनंद के उत्सव, और जो भगवान थे, आजकल हमारे जैसे हुड़बक सेवक तो भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते, ना करना चाहेंगे, भगवान जो नित्य परिकर सेवक गोप गोपियां हैं, अब ठाकुर जी के जो नवदंपति हमारे जुगल सरकार को ला करके, और नावन के जो वन है, इस वन के जमुना तीर वनचारी बड़े बड़े सुंदर सुंदर तमाल और कदम वादी वृक्ष में झूला सजा करके, बड़े सुंदर झूला सर के कुंज में, और उनको झूलाना शुरू करेंगे, झूलाना शुरू करेंगे, वो बड़े आनंद, वो भी आनंद होगा जो झूलाएंगे, जो झूला बैठे वो भी आनंद है। और जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, जब कृष्ण खुश हो जाएंगे तो फिर जगत खुशी हो ही जाएगा। संपूर्ण वृंदावन ब्रजमंडल पशु पक्षी गोवच्छड़ से जीव जंतु आदमी और गोप गोपी पूरा आबाल वृद्ध वनिता सब खुशी खुश हो जाए, पूरा खुशहाल हो जाएगा, देखने में भी अच्छा और देखने में हरियाली है, और देखने में ठाकुर जी झूला में बैठे हैं, है ना, नहीं अंदर के बाहर के दोनों अच्छा ही है, सुख है। तो इसलिए और झूला में बैठा कर सुंदर सुंदर पकवान भोग भी लगाएंगे, आरती करेंगे, वही बैठे बैठे बाहर में, घर में नहीं, आउटसाइड पिकनिक चलेगा अभी कुछ दिन उनका। तो ये बड़े आनंद की तिथि आज से शुरू होता है हरियाली तीज। चलिए आपका तो यहां मैंने देखा थोड़ा बैकड्रॉप हरी हरी किए हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि आप कृष्ण बलराम को रखे ना, इसलिए मैं आपको बताता हूं, ये हमारे वृंदावन के लड़के हैं, ब्रजवासी हैं, दिल्ली वाले थोड़ी हैं, उनको यहां रख करके इसे क्यों घर के अंदर बंद कर रखते हैं, उनको भी हरी हरी पेड़ पौधे के अंदर आज रखना चाहिए, हरियाली के वेश होना चाहिए। अच्छा ये पेंटिंग करा दी, थोड़ा पत्ता भी तो लगाया, चलो कलर लगाने से थोड़ी होगा। आजकल तो ऐसे जमाना आ गया कि प्लास्टिक की हरियाली करते हैं, फूल लगाते हैं प्लास्टिक का, पेड़ लगाते हैं प्लास्टिक का, पत्ता लगाते हैं प्लास्टिक का, फल भी प्लास्टिक का, तो उसको कभी खा करते देखो? नहीं, खाने के लिए तो रियल फल चाहिए और सजाने के लिए प्लास्टिक फल चाहिए। ये सब कपट है। इतने अभी हरी पत्ता पूरा संसार में भगवान ने बने, प्रकृति ने बना दिया, तो थोड़ा लाकर ठाकुर जी को, लो भाई ठाकुर जी आपके प्रकृति आपके लिए सजा दिया है, थोड़ा जंगल मंगल कितने सुंदर दिखेंगे राधिका रमण जी कृष्ण बलराम, है ना? नहीं, जो हरी जंगल के अंदर खड़े रहेंगे बोला आज के दिन कम से कम देखते हैं, ना नहीं करना चाहिए। अपने अपनी उत्सव तिथि के अनुसार ठाकुर जी के भाव के अनुसार सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ये कोई विग्रह ऐसा नहीं है। न देव विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, भगवान कोई पत्थर काठ धातु में नहीं है। भगवान कैसा है? न भाव ही विद्यते देव तस्मात् भाव ही कारणम, भगवान भावग्राही है, वस्तुग्राही नहीं है, तो भाव के अनुसार सेवा होना चाहिए उनका, है ना? नहीं तो इसी प्रकार तिथि के अनुसार उनका सेवा, उनके उत्सव, उनका भोग राग, उनके गीत इसी प्रकार से होना चाहिए, तो बोलेंगे ये मेरा रसिक भक्त है, है ना? नहीं तो आप कृष्ण बलराम को रख करके फिर ऐसे करेंगे तो ठीक नहीं लगता, है ना? बोलेंगे देखो मेरे कृष्ण बलराम हमारे सीनियर वहां कितने बढ़िया से रहे, तो हम जूनियर बनकर यहां कैसे बैठे हैं, है ना? नहीं वृंदावन कृष्ण बलराम सीनियर है ना? अरे कृष्ण, एनीवे आप भागवत के प्रसंग में जाते हैं। ये भागवत के सप्तम स्कंद जिसमें प्रसिद्ध चरित्र आता है प्रह्लाद चरित्र, पूरी भागवत महापुराण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग आता है तो उसमें से एक अनन्य महत्वपूर्ण प्रसंग है प्रह्लाद चरित्र। भगवान भक्तों को कैसे पोषण करते हैं, पोषण सर्ग है, इसमें प्रकट होता है। दो बाल भक्त प्रसिद्ध हैं, एक है ध्रुव, एक है प्रह्लाद, और ये प्रह्लाद वो भी 5 साल की उम्र में कैसे भक्ति किए, कैसा उनका निष्ठा था, जिनके लिए भगवान प्रकट भय हो करके उनको रक्षा करने के लिए उनके पिताजी को मार दिए और उनको शांत किए, उनके वचन रक्षा करने के लिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, उनके भृत्य के वचन को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। भृत्य कौन है? अनेक भृत्य होते हैं, लेकिन भृत्य श्रेष्ठ प्रह्लाद। उन्होंने कहा, उनके पिता बोला क्या भगवान, तू कहां से बल मिलता रे तुझे, तेरा भगवान कहां है? ना सर्वत्र है, सर्वत्र है, यहां तो नहीं है, ना यहां है, तो तैयार होता मारने के लिए। प्रह्लाद बोला ये खंभे में कर है क्या? दृश्य थे, मुझे दिखाई पड़ रहा, बैठे तो है। बोला क्या जो दिखाई पड़ रहा है क्या? आंख क्या है? बोला मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा, शायद होना हो, मुझे देखने बैठा होगा, तो पहले उनको मारता हूं बाद में प्रह्लाद को मारूंगा। तो एक गुस्सा मारा पिलार में, तो प्रह्लाद की वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कि मैं भी इस खंभे में हूं, इसीलिए भगवान ने प्रकट हो गए। प्रकट होकर इतने गुस्सा किए, क्यों गुस्सा किए मालूम है? इसे कभी कभी मन में प्रश्न उठता है, भाई हम भगवान को प्रार्थना करते नरसिंह रूप, नरसिंह रूप, है ना? नहीं तो मतलब वो ट्विन फॉर्म है ना, आधा आदमी और आधा सिंह है, नर हरि, हरि माने सिंह, आधा मनुष्य है और आधा पशु है। तो ऐसा भी तो हो सकता था नरसिंह रूप भी, ये जो अपर हाफ लायन है, लोअर हाफ मनुष्य है, ऐसे अपर हाफ आदमी और लोअर हाफ हरि भी हो सकते, सिंह भी हो सकता, तब भी नरहरि हो सकते हैं, जैसे वो चाहे अपसेट डाउन करो कुछ भी करो हो सकता है। तो भगवान ऐसा क्यों नहीं किए? ऊपर के ओर मनुष्य होकर के नीचे ओर पशु हो जाते, उनको तो किसी व्यवस्था से भरना, किसी को मारना था इसे मार देते, नाखून ला के मार दिए, क्या बड़ी बात है उनको, असल से लेना थोड़ी हुआ, और नाखून है यही तो अद्भुत है। तवा कर कमल, आपके कर कैसा है? कमल जैसा है, कमल में इतना कोई अस्त्र से, कमल कितने मुलायम होता है, कितने सुगंध, कितने नरम, कितने मुलायम होता है, इसने मुलायम इतनी वज्र जैसा कठोर छाती को फाड़ दिया एक कमल जैसी मुलायम चीज में, और नाक कमल में कोई नाखून होता है इतने कठोर नाखून, लेकिन यही तो अद्भुत है, यही आश्चर्य है। तम कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगम, श्रृंग जैसा नाखून अद्भुत है, कमल के ऊपर कैसे आ गया भाई सिंह? कमल में सिंह तो हमको इतना देखा ना सुना, लेकिन भगवान सारे अद्भुत उनमें हो सकता है। तो उन्हें फाड़ दिए, लेकिन इतने गुस्सा किए, इसमें पूछ रहा था तो क्यों अपर हाफ लायन बने, नीचे हाफ आदमी बने, क्यों उल्टा क्यों नहीं बने? इसमें ये देखा जाता है कि जो अपर हाफ जो आदमी होते, मनुष्य होते, तो मनुष्य इतना क्रोध प्रकट नहीं कर सकता ना। मनुष्य चाहे कितने भी गुस्सा हो जाए, देखकर बोले हाँ थोड़ा गुस्सा है, इतने गुस्सा के प्रभाव नहीं कर सकता। लेकिन अगर सिंह गुस्सा करेगा, ओ बाप रे बाप, उनका दहाड़, उनका जिह्वा बाहर निकाल करके जो मुखवाद्यान करेगा, उनके आयाल जैसे होगा, उनको देखने से कोई हार्ट फेल हो जाए, कपड़ा खराब हो जाए। हम लोग का तो बात ही छोड़ो, बड़े बड़े देवता इंद्रादि रुद्रादि और सिद्धाचारण गंधर्व किन्नर, बड़े बड़े देवता, उनके हाल इतने खराब हो गया, कई मीटर दूर से खड़े होकर के बाइनोकुलर से लगकर देख रहे थे, पास भटक नहीं रहे थे। और हिरण्यकश्यप मर ही गया था, ऐसा बात नहीं कि डर रहे थे हिरण्यकश्यप है कोई अटैक एक्शन ले लेगा, नहीं, हिरण्यकश्यप मर चुका तब भी भरोसा नहीं हो रहा था, बोले नहीं पक्का करो मरा कि नहीं। तो डेथ सर्टिफिकेट एलोपैथिक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक सभी का डेथ सर्टिफिकेट इश्यू हो गया, डेथ सर्टिफिकेट देकर कंफर्म मर चुका है, डेड बॉडी पड़ा है और है ही नहीं हो, यह कंफर्म होने का बाद भी पास आने के लिए साहस नहीं हो रहा, क्योंकि प्रभु ने मार दिए, थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू करते हैं दूर से, दूर से थैंक यू भाई प्रभु आए उनको मार दिया, हमारे शत्रु को थोड़ा उनको आगवानी करे आरती करे, तो पास भटकते नहीं, वो कई आधा किलोमीटर दूर से ही थैंक यू कर रहे हैं, आरती प्लेट सजा करके ब्रह्मा आदि आगे अग्रभाग में खड़ा होकर बोलते हैं कि चले, लेकिन कैसे चले, जब देखते हैं इतने डर लगता है, बाप रे बाप, अरे मर गया हिरण्यकश्यप, अभी डेथ सर्टिफिकेट इश्यू, अभी तो ठंडा हो जाए शांत हो जाए, लेकिन नहीं, भगवान इतने क्रुद्ध हो रहे थे, इतने गुस्सा हो रहे थे, इसीलिए तो सिंह वदन लिए हैं, सिंह मुख से इतने गुस्सा प्रकट कर सकते हैं। क्यों इतना गुस्सा हो रहे थे? क्योंकि मेरे एक छोटा बालक भक्त, एक नादान 5 साल के बच्चा, नियत्ता ना कोई अस्त्र शस्त्र है, ना कोई प्रताप है, ना पराक्रम है, और उनके खुद पिता और उनका खुद राज्य, संपूर्ण असुर समुदाय, सारे सैनिक, सारे फौज उनके ऊपर टूट पड़े मारने के लिए, और क्या क्या उपाय नहीं किए उसको मारने के लिए, क्या नहीं किए, पूरे भागवत वर्णन करता है, मारने के लिए जितने विधि हो सकता है, जितने उपाय हो सकता है, नृशंस कठोरता सब कुछ अपना लिए, मरा ही नहीं है। लेकिन इतने कष्ट दिए उनके बालक भक्त को, भगवान तो अभी तक नहीं प्रकट हो रहे थे, लेकिन उनको एक एक सेकंड में उनको महसूस होता था, प्रहलाद को तो कुछ नहीं होता था, सारे तकलीफ भगवान अपने ऊपर उठाते थे, उनका गुस्सा सब स्टक होकर रखा था, सारे स्टक था, अब जब बाहर प्रकट भय, जब रक्त ने प्रकट कर दिया आ जाओ, तो आए तो सारे गुस्सा सीरीज से निकाल से जो स्टक था, ओल्ड स्टक से अब तक सारे गुस्सा प्रकट करते हैं, तो गुस्सा शांति नहीं हो रहा, गुस्सा होते ही चले जा रहे, होते ही चले जा रहे गुस्सा, जब याद आता है तुम प्रहलाद को मेरे को इतने कष्ट दिया, तो इसको इतना तंग किया, तो और गुस्सा बढ़ता है, और गुस्सा बढ़ता है, मर गए हिरण्यकश्यप, उनका अंत को फाड़ करके गले में डाल दिया, माला पहनने वाला नहीं था, डर के मारे स्वयं माला पहन लिया अपने आप, है ना, नहीं ठाकुर जी को हम लोग तो माला पहनाते हैं, लेकिन ईसा कभी देखे ठाकुर जी अपने माला पहन ले, वो कोई माला फिर फूल का थोड़ी था, फूल फूल कौन लाएगा देने के लिए, इतने बिकराल बिकराल रूप है, और स्वयं मारे फाड़े वही डेढ़ बड़ी से आंत को निकाल करके माला पहन लिया, कोई आंत भी कितना खराब चीज होता है ना, नहीं कोई डेढ़ बड़ी का कोई आंत निकालो, हाथ लगन सिर्फ जाओ स्नान करके आओ, डेटल से हाथ धो, ये क्या कर ले, भगवान जो परम पवित्र है, उन्होंने आज इस डेढ़ बड़ी से आंत को फाड़ कर निकाल कर माला पहन लिए, कैसे संभव हो सकता है, क्या भगवान अभी पवित्र नहीं है? भगवान तो हमेशा पवित्र है, तो इसे कैसे पहन लिए कि हिरण्यकशिपु का आंत्र भी परम पवित्र हो चुका था, क्यों? क्योंकि हरि उसके अंदर बैठे थे। आप अष्टम स्कंद में पढ़ेंगे, जब बलि महाराज न सॉरी वामन देव बलि महाराज को ठगने आए हैं, पहले चिटिंग तो होने न की सिखाए सबको, तो जब चिटिंग करने आए थे तब बलि महाराज को बड़ाई करते करते बोलते हाँ क्यों नहीं कहेगा, आपका खानदानी बड़े हैं सब देने वाले, और क्या बताऊं, अरे आपका जो पितृव्य था हिरण्यकश्यप का भाई, ऐसे ऐसे मारा, हिरण्यकश्यप गुस्सा हो रहा था, मुझे तो मारने के लिए पीछे पड़ गया, मैं कहां जाऊं उपाय नहीं मिला, तो उसी का नासा रंध्र उसका अंदर घुस गया, उसके अंदर जाकर बैठा। जब भगवान उसका अंदर जाकर बैठे तो अंतस्थली पवित्र हो जाएगा ना? नहीं, भगवान के बसती जहां होगा तो अपवित्र होगा वो, तो इसीलिए उसको निकाल करके पहन ली माला। बोली फूल इतना पवित्र नहीं हो सकता, जब मेरा बैठने का स्थान है अंत था तो होशिक माला पहना ली, पहन ली खुद। और इसे अंत के माला पहन करके सारे फवारे की तरह ब्लड निकला था, सारे मुख ये सारे रक्ताक्त है, और उनके जो सिंह का आल जो निकल रहा है दाढ़ी, पूरा गगन मंडल विस्तृत हो रहा है। ऐसे ऐसे आंखें फाड़ करके जीभ फैला करके दांत, तो इतने विशाल विशाल दांत जो वर्णन है, तो इसी को ऐसे मुखवाद्यान कर गर्जन कर रहे हैं तो कौन पास में भटके। सारे देवता इकट्ठा हो एकत्रित होकर के टुगेदर आरती प्लेट सजा करके अब पास जाएं, आरती करें, सब उपचार लेकर गए, लेकिन पास नहीं भटक रहे। क्या करे, कोई उपाय नहीं मिल रहा है। तो बोले माता जी की बुलाइए, भाई उनके पति वही ठीक करें, हम क्या करें। तो जाकर प्रार्थना किए, भगवती लक्ष्मी को बुलाए, बोले प्रभु जी को आप देखिए बहुत गुस्सा हो रहे हैं। तो मर गया, फिर क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं पता नहीं, हम थोड़ा पूजा कर लें, बाकी बाद में गुस्सा होए, हाँ थोड़ा हमको टाइम दे दे, दो चार मिनट हम जल्दी जल्दी पूजा कर भाग जाए। तो लक्ष्मी जी बोले ये क्यों चिंता कर, मैं चलती हूँ ना, हाँ तो हमारे हैं, अब चलते ना, कोई बात ना, आप केवल माला पहना दीजिए, बाकी हम कर लेंगे, बाकी हम समझ लें, केवल माला पहना दीजिए ना। चलो माला तो ही पहना देता हूँ, उसमें क्या, मैं तो शादी के समय माला मैंने खुद पहना था, अब पहना देना क्या फर्क पड़ता। चलो लक्ष्मी जी वो कमर में क्या अपने प्रणत साड़ी को भीड़ करके और निकल पड़े फ्रंट फॉरवर्ड होकर के, आगे चल करके चल पड़े करके माला ब्रह्मा जी से लेकर के दो स्टेप आगे आकर देखें, देख कर ब्रेक दे दिए, ब्रेक लगाए सडन, देख करके ओ कांपने लगे। बोलते हैं कि मैं तो खुद देखी हूं, उनको लगता है वो नहीं है, लगता है वो नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। लोग अपने माला, माता जी आप थोड़ा, नहीं नहीं वो नहीं है, पता नहीं इतनी गुस्सा, पता नहीं वो पंजा ऐसे उठाने लग जाएगा मेरे ऊपर, हाल खराब हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी, आप संभालो जाकर मैं जा रहा हूं। अभी तक तो ईसा गुस्सा मैं कभी नहीं देखा था उनका, पता नहीं, हाँ फर्स्ट टाइम भगवान के ऐसे गुस्सा देखा है उन्होंने प्रहलाद के कारण। तो जो किसी उपाय नहीं मिला तो ब्रह्मा जी बोले अब करी क्या, माला कौन पहलागा। तो प्रहलाद को बोला, बोले बेटा तेरे लिए हमारे प्रभु जी ऐसा गुस्सा हुआ, तू ही कारण है, तू जाकर माला पहना। अच्छा मेरे लिए है, वरदान कौन दिया था इन्होंने किसी को, तो मैं ही कारण बना, मेरे जन्म होने से पहले तुम्हें बनाया उनको ऐसा। और बोल करके बोलते हैं सबका सामने, बेटा तेरे ही लिए हमारा प्रभु ऐसे गुस्सा है, और उनको जाकर तू ही शांत कर। प्रहलाद छोटा सा बालक, छोटा सा 5 साल की उम्र का बालक, और नरसिंह देव तो हिरण्यकशिप का राज सिंहासन पर बैठे हुए, बड़े ऊंचा आसन, और इतने विशाल शरीर उनका आकाश चुंबित कर रहा है, और ये छोटा सा लड़का है, और मैं से माला ले, और ओके ठीक है नो प्रॉब्लम, मेरे वजह से गुस्सा है तो मैं माला पहना देता हूँ जाकर के, क्योंकि सबको इतने भयानक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रहलाद को भयानक नहीं, उनको तो आपने डियर एंड नियर एंड मोस्ट लवली, उनके प्रोटेक्टर, उनके हरि, उन्हीं की तरह दिखाई पड़ते हैं। बढ़ गए आगे फटाफट, बढ़ गए जाकर के, हाथ में दोनों हाथ में माला उठाए पहना निकले, इसे पंजा उठा तो ऐसे करते हैं, हरि वो कितने विशाल ऐसे मुंह करे चढ़ा, भगवान तो गर्जन करते जा रहे हैं, ब्रह्मा सारे देवता लोग देखते हैं ये छोटे बालक क्या करे, वो तो ऊपर से तो नजर ही नहीं पड़ता, नीचे बुजुर्ग देखते 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 चारों तरफ गुस्सा कर गर्जन कर देखते थे, देखते देखते थोड़ा डाउनवर्ड नजर आ गया, नजर पड़ गया उसके ऊपर, बस वहीं लख गया, भगवान की नजर भी हिल नहीं सका। इस अवस्था में भक्त प्रहलाद को देखते हुए जब माला लेकर के इसे इसे उचक रहा है माला पहनाने के लिए, उसको देख करके भगवान की नजर एक टक वहीं स्थित हो गया, सारे गुस्सा फुस्सा कहां अंतर्धान हो गया बताने, बिल्कुल शांत मूर्ति हो गए, शांत नरसिंह। अब बोले वो मुझे माला पहनाना चाहता है मेरा भगत, मुंह नीचे की कितने भी नीचा कर दो वो कहां माला पहुंचेगा, वो तो होगा नहीं, वो इतने हाइट है इतने नीचे, अब खाली गला नीचे करने से थोड़ी होगा। बोले नहीं माला मुझे पहनाना है, उन्हीं के हाथ से पहनना है। तो स्वयं प्रहलाद को आपने हाथ से उठा लिए,
उठा करके मुख के पास, सर के पास ले ली, यहां लेकर कंधे में बैठा दिए। बोले अब पहनाओ, कंधे के ऊपर बैठा करके गले नीचे करके बोले अब पहनाओ। अब प्रहलाद ने तो माला पहना, सब देख रहे थे ब्रह्मा जी, सब देख रहे थे। प्रहलाद ने माला पहना दिया, माला पहना दिया, और माला पहनने के बाद भगवान ने इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, इतने उनका दिल खुश हो गया कि मानो प्रहलाद छोटा सा बालक को तो जैसे कोई सिंह आपने सावक आपने छोटे शिशु को प्यार के मारे सूंघता रहता है और चाटता ही रहता है, तो सारे प्रहलाद के शरीर को आमलोचन अपाद मस्तक चाटने लगे भगवान, इतने प्रेम उमड़ पड़ा। और सारे देवता लोग देख रहे हैं, वाह रे वाह क्या चल रहा है ये। अब प्रहलाद तो मानो उनके हस्त भगवान के हस्त कमल जो स्पर्श किया प्रहलाद के शरीर में, वो तो पहले से पवित्र हो चुके थे। अब जो कुछ बाकी था सब झाड़ फूक करके सारे बिल्कुल परम पवित्र हो गए। ऐसे पवित्र स्थिति में भगवान आपने का हाथ में उठा करके, आपने कंधे में बैठा करके, स्वयं उनको सूंघ रहे, नाच रहे हैं, उनके चाट रहे हैं उनको, तो प्रहलाद इतने प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे, इतनी प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे। प्रहलाद की प्रसन्नता को देख करके भगवान को सहन नहीं हुआ, बड़ा लोभ जागृत हुआ उनके हृदय में। वो देखने लगे प्रहलाद को, उनके सुख मुख मंडल को देखे, देख करके बोले हाय हाय, कहा कि मैं भगवान हूं, बेकार भीक मुझे, मैं तो मुझे सुख मुझे मिला ही नहीं जितना सुख प्रहलाद को मिल रहा है। प्रहलाद मेरा जितने सुखी हो रहा है, मैं भगवान होकर के सर्वसमर्थ आप तकाम आत्मराम होकर की हार गया उनके सामने, ये सुख तो मुझे अभी तक नहीं मिला। लोभ जागृत हुआ इस सुख पाने के लिए। वही बैठे बैठे प्रहलाद को गोद में लेते लेते लाड़ प्यार करते करते कसम खाए, बोले अब से प्रतिज्ञा करता हूं, इतने बार जब धरती में प्रकट हुआ सब देवताओं को रक्षा करने के लिए, धर्म संस्थापना करने के लिए, कोई मेरे माता पिता नहीं होते थे, अब से जब प्रकट होऊंगा तब जरूर मां बाप बना करके आऊंगा, ऐसे लाड़ प्यार मुझे भी चाहिए। कितने प्रहलाद बेटा को कितने सुख हो रहा है, मेरे तो सुख मिला ही नहीं। अब देखिए नरसिंह अवतार से पहले भगवान के कितने अवतार हुआ है, सबसे प्रथम अवतार क्या है, मीन अवतार, उनका फादर मदर कौन है, पेरेंट्स का नाम पता है ही नहीं। उसके बाद का अवतार क्या है, उनका पेरेंट्स पता है, किसका नंदन कुर्म है बोल सकते हैं नहीं। उसके बाद का अवतार क्या है, शुकर रूप है ना, नहीं। उनका पेरेंट्स कौन है, किसका रूप, नथिंग। उसके बाद में नरसिंह, उनके पिताजी कौन है, मिस्टर खंबा। कोई नहीं, खंबा के साथ तो किसी बाप के रिलेशन करेंगे, कोई है ही नहीं। तो अभी से भगवान कसम खाए, बोले अब जब जब मैंने अवतार लूंगा तो एक सेट मां बाप तो बनाऊंगा, क्योंकि जो वात्सल्य रस है अभी तो भगवान बोले मिला ही नहीं था, उसका टेस्ट नहीं था। तब सेकंड नरसिंह के बाद में जो अवतार क्या लिया, अब उसके बाद में जितने अवतार लेते ही रहते हैं, अब अनंत काल तक जितने अवतार होंगे कभी नहीं चुकेंगे, और पेरेंट्स बनाने के लिए जरूर करेंगे। ये प्रहलाद को देख करके भगवान के सबक सीखे भक्त से, तो ये सारे देवता देख रहे थे। अब जैसे इतने खुश हो गए, प्रहलाद को बहुत लाड़ प्यार किए, तो सुजोग देख करके फिर आरती उतारे। आरती उतारने के बाद सब एक एक करके लाइन करके खड़े होकर के अपना अपना स्तुति करने लगे, पुष्पांजलि वगैरह दे करके स्तुति करने लगे। ये स्तुति चल रहा है इस प्रसंग में, देवताओं की स्तुति, भगवान बैठे हुए हैं अपने आसन में और स्तुति कर रहे हैं। एक एक ग्रुप अपना अपना आकर के अपना अपना हाथ जोड़ करके अपना स्तुति प्रसंग करके चले जा रहे हैं, लाइन करके सब सीरियल अनुसार आते हैं। वो डिसिप्लिन है देवता में, यही गुण है, इनडिसिप्लिन नहीं, पूरे डिसिप्लिन के साथ। अब देखना सीरियली उनका वर्णन आता है, एक से बाद दूसरे डिसिप्लिन में आकर के अपने जो भी पुष्पांजलि जो अपने प्रार्थना अर्पण करके चले जाते हैं अपना सीट में बैक, आओ एक एक करके चले जाओ। एक साथ में हम जैसे झपट पड़ते हैं प्रसाद बंटा, तो इस कर्म में तो डिसिप्लिन मानो क्या बताए। लेकिन ये देवताओं से सीखना चाहिए भाई, आरती के बाद में भगवान की प्रार्थना करना है। अब कोई व्यास जागरण होता है, हम जाकर पुष्पांजलि दो या आरती करो, ऐसे टूट पड़ते हैं मानो कि क्या कहें, ऐसे टूटना नहीं चाहिए। देखिए देवताओं किसने डिसिप्लिन, बहुत सारे 33 करोड़ थे लेकिन पूरे डिसिप्लिन में आते हैं, अपने अपने गोष्ठी के साथ, जो मंदिर के जो हो अपने मुखिया को लेकर के साथ में आओ, एक झुंड में एक ग्रुप के साथ करके चले जाओ, ज्यादा हो तो ग्रुप वाइज कर दो, एक एक इंडिविजुअल नहीं ग्रुप वाइज कर दो, ग्रुप वाइज जाते हैं नागा उच्चुहु विद इन ए ग्रुप नॉट ए सिंगल पर्सन, हाँ कांग्रीगेशन कांग्रीगेशन का साथ एक ग्रुप में एक साथ में आए, पंजाबी वाला टेबुल बस पंजाब का हेड रुकमन कृष्ण प्रभु का आगे करके उनको आगे करके आओ, सारे एक साथ में अपना अंजलि दे करके चले जाओ, इसी प्रकार भगवान के साथ सब ग्रुप के साथ आकर देते हैं, तो नागा उच्चुआ जी नाग लोग आकर बताते हैं, आकर के बताते हैं, वो क्या बताते हैं, आपका समय हो रहा है कहाँ गया, ये न पापे न रत्नानी स्त्री रत्नानी हृतानी च, हे प्रभु सबसे पहले भगवान का नाम नहीं लिए प्रणाम नहीं, प्रणाम बाद में करेंगे, पहले बताते हम क्यों प्रणाम करते हैं, अकेजन पहले बताना है, ये सीखना चाहिए उनसे भी, देखो मतलब आप जाकर पहले प्रणाम ठोक देते हैं बाद में बोलते हैं, नहीं पहले कारण तो बताओ हम जो एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन महोदय लिखने से पहले आप सब्जेक्ट लिखते ना, तो पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट मैटर देख करके बाद में प्रणाम जोड़ेंगे तो नाग ने पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या सब्जेक्ट आपका है, हम क्यों प्रणाम करने आए, नहीं तो हम नहीं आते थे, हम उपकृत हुए अनुग्रहित हुए कैसे ना, हमारे पत्नियां हो हमारे संपत्ति दोनों ले गया था हड़प करके, वो तो प्रभु आपकी कृपा से दोनों हमको वापस मिला, इसीलिए प्रणाम करते हैं, इससे क्या पता चलता है, स्वार्थी है सारे देवता, इसीलिए तो माला नहीं पहना पा रहे थे, निस्वार्थी होते वो भी प्रहलाद की माला पहना पाते हैं, तो इसलिए हम लोग भी उनसे सबक सीखना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, जाओ तो पहले आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखो बाद में प्रणाम ठोको, इसी के लिए नहीं नहीं नहीं, अगर आप भक्त होना चाहते हैं, भक्त का फॉर्मूला क्या है, भक्ति का फॉर्मूला क्या है सीखना चाहिए, जिस भक्ति के द्वारा हृदय कमल प्रसन्न हो जाता है, जय आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को प्रसन्न करने वाला जो विलक्षण भक्ति होता है, भक्ति योग, वो कैसा लक्षण है उसका, क्या उसका सिम्टम्स है, अहेतु की अप्रतिहता, दो ही सिम्टम उसके होता है, वास सवे पुंसा परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ज आत्मा सुप्रसिद्धति, जिसके द्वारा आत्मा सुप्रसन्न हो जाता है, जब आत्मा प्रसन्न हो तो शरीर तो प्रसन्न होगा, ये तो ढकन है ना, जिस भक्ति के आचरण के द्वारा आत्मा ही परम प्रसन्न हो जाए, वो भक्ति कैसा होना चाहिए, किसके प्रति होना चाहिए, वही समस्त मनुष्यों का समस्त प्राणियों का परम धर्म है, वही पराधर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, सर्वश्रेष्ठ आचरण वही धर्म है, वही पुरुष अधुख्य भगवान के लिए भक्ति करना चाहिए, भक्ति कैसे होना चाहिए, सबसे प्रथम कहते अहेतु की, ऐसे भक्ति होना चाहिए जिसका कोई वजह ही ना हो, इसी के लिए मैं भक्ति करता हूं, इसी के लिए प्रणाम करता हूं, इसके लिए पुष्पांजलि देता हूं, इसके लिए मैं बुलाया आपको, इसी के लिए नो, हेतु सिद्धा भक्ति नहीं, हम लोग अभी जो भक्ति करते हैं ठीक है करते हैं, ये भक्ति नहीं, भक्ति का स्टाम्प लगाते हैं, आरोप सिद्धा भक्ति, भक्ति के आरोप लग जाते हैं, हम भक्ति नहीं करते हैं, भगवान में गीता में जो कहते हैं क्या श्लोक है कि मुझे सब अर्पण करो, जत हाँ क्या है, जत करोसी जद स्नासी जद दुहसी जदासियत जत तपस्वसी कौंतीय तत्कुरुष्व मद अर्पणम, अब जो कुछ करता है खाना पीना तपस्या हैं टेन जो करता है तो मुझे अर्पण कर दो, हम लोग सब इसी को मान लिए तो जो हम खाते हैं अपने लिए चाहिए, ओ आज थोड़ा ठंडी पड़ा है गर्म गर्म पकौड़ा चाहिए, बनाओ पकौड़ा, आज पकौड़ा बन गया, भगवान भोग लगाया ना, नहीं हाँ लग गया, तुलसी पत्ता मार के ताली ठोक करके लाया, दो खाओ जब क्या पता भगवान को पकड़ा चाहिए था या नहीं, ये कोई विचार किए, पकड़ा हमको चाहिए था, हमारे इंद्र तुल्य पकड़ा चाहिए था, तो भगवान को थोड़ा थाली में लगा कर तुलसी पत्ता मार के ताली ठोक करके ले आओ, हो बस खाओ, हो गया प्रसाद, कोई सोचा कोई प्रसाद हुआ कि नहीं, भगवान लिए कि नहीं, उनको चाहिए कि उनका पेट की स्थिति क्या है, उनको पकड़ा चाहिए कि नहीं, नहीं आपने कुछ चाहिए बना करके ठाकुर जी के सामने स्टाम्प मार के लिया हो, लेबल हो गया ISI ब्रांड अब है ना नहीं तो इसे ब्रांड लगा करके, आरोप लगाकर, स्टाम्प लगा करके हम भक्ति कर लेते हैं। लेकिन नहीं, जो भक्ति आपने लिए नहीं, जो बनेगा भगवान के लिए ही बनेगा, हमारे लिए नहीं। हम तो भगवान के उचिष्ट भोजन भोजी हैं, उनके उचिष्ट पाएंगे, हमारे लिए बना करके भगवान को दिखाकर स्टाम्प लगाकर खा लेंगे ऐसा नहीं है। ये तो भक्ति का आरोप मात्र है, भक्ति नहीं है। तो इसलिए भक्ति कैसा होना चाहिए, ना अहेतु की, जिसका कोई हेतु ही ना हो, वजह ही ना हो। इसलिए ना, इसलिए नहीं, किस लिए, ना भगवत प्रसन्नता के लिए, केवल उन्हीं के लिए, उनको ही प्रसन्न करूं, उसमें मैं और मेरा के भाव उठ ही नहीं सकता, केवल उन्हीं के सुख कामना रहेगा, विचार रहेगा। ये अहेतु की भक्ति। और ये भक्ति भी कैसा होना चाहिए, हफ्ता में एक दिन, ओनली संडे, ये सब प्रतिहता भक्ति है। अप्रतिहता, अविच्छिन्न तैल धारावत, कंटिन्यूअस फ्लो, इसको कहते हैं अप्रतिहता। एक बार शुरू किया तो किया, रुक नहीं सकता। कोई ऐसे शक्ति इस समग्र ब्रह्मांड में नहीं है जो उसको रोक दे, उसको प्रतिहत करते, जो बाधित करते। ध्वंस का समस्त कारण मौजूद होते हुए भी ध्वंस नहीं हो सकता। हर प्रकार के व्यवस्था रोकने के हुए भी रोक नहीं सकता। प्रह्लाद की भक्ति देखिए, जब से भजन शुरू किया, पूरे ब्रह्मांड त्रिलोक प्रतिव हिरण्यकशिपु उनके पीछे पड़ गया, सारे ससा माने आगे पीछे त्रिलोक उनके शत्रु बन गए, अपने बाप से लगा करके रुक सके, इसको ये है उदाहरण अप्रतिहता भक्ति के। जो भक्ति हेतु विहीन हो, जो भक्ति बाधित विहीन हो, ऐसे भक्ति के द्वारा ही आत्मा परम प्रसन्न होता है। तो ये देवताओं की इस प्रार्थना से हम सीखते हैं कि उनका भक्ति, उनके प्रणाम सब सकाम है, हेतु युक्त है। इसलिए श्री नागावचु, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट हेड है इसलिए सम्मान करना चाहिए, श्री लगा दिए, रेस्पेक्ट, श्री नागा बोले, हम हे प्रभु, हम लोग आपको टुगेदर प्रणाम करते हैं, टुगेदर प्रणाम करते हैं, कुछ भेंट फेट दे नहीं थे लिखा नहीं, भेंट फेट देने खाली प्रणाम दे दिए सुखा है ना नहीं। और बोले कि हम लोग का धन संपत्ति भेंट क्या देंगे, सारे ले गया था उन्होंने, अब आप दिए वापस, अब आपसे लिए आपको क्या देंगे, आपसे तो लेने आए, देने नहीं आए। कोई बड़े आदमी साधु संत भगवान के पास जाते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ तो लेकर चाहे देने के लिए, तो आकर बोलते हैं साहब हम क्या देंगे, हमारे पास कुछ था नहीं, अभी आपसे लेने आए, आप हमारे पत्नियों को हमारे संपत्ति को वापस दीजिए, उनसे रखा किए हम दे दीजिए, वही हमारे प्रसन्नता के कारण है, यही प्रसन्नता के हेतु हम आपको प्रणाम करते हैं, ये लिखे ना ये बात क्या, तद्वख्य पाटने नासम दत्तानंद नमस्तुते, आप आनंद दिए इसलिए नमस्कार आपको है, आपको इसलिए प्रणाम जड़ा रहे हैं, क्यों, आप हमको खुश कर दिए, आप हमको खुश कर दिए, कैसे खुश कर दिए, ना हमारे वाइफ को हमको वापस कर दिए, हमारे जो रत्न आदि वो भी वापस कर दिए, आप केवल प्रणाम ठोक दें, आप कुछ उसमें हिस्सा दो नहीं, केवल प्रणाम करके उनको विदा कर दो, टाटा बाबा करके आ जाए, है ना। तो फिर भी कम से कम भगवान को इससे नाग से दुर्गुण मत समझिए, ये भी गुण है, उससे हमको सीखना चाहिए। कृतज्ञता, एटलीस्ट दे आर ऑफरिंग देयर ओबिसेंसेस, कोई कारण में क्यों ना हो, कोई वजह से क्यों ना हो, भगवान के सामने जाकर के उनको थैंक यू करते हैं, उनको प्रणाम तो करते हैं, लेकिन हम जैसे बुद्धिमान हुड़बक अभी तक वो भी नहीं कर पाते हैं, अब समय हो चाहता है, कैसे नहीं करते हैं? काल बताएंगे। हरे कृष्ण।